اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کے غلام بن جاؤ. عبد کہتے ہیں غلام کو اپنے رب کے. تو عبد کا لفظ جو ہے وہ اصل میں رشتہ ہے رب کے ساتھ انسان کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ سلسلہ ہے ابھی، تو بات یہاں پہ اب شروع ہو رہی ہے ایک نئے سلسلے سے. فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں پہ اب بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سورۃ الفاتحہ میں انسان نے دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تیرا ہی غلام ہوں، اور تجھ سے استعانت مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں. بات تمام انسانوں سے ہو رہی ہے اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کے غلام بن جاؤ. عبد کہتے ہیں غلام کو اپنے رب کے. تو عبد کا لفظ جو ہے وہ اصل میں رشتہ ہے رب کے ساتھ انسان کا. عبد رب، سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو رشتے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رب کا ذکر کیا، پھر عبد کی بات ہوئی ہے، جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے عبد کی بات کر رہے ہیں، پھر اپنی ربوبیت کی بات کر رہے ہیں. عبد، جس طرح میں نے کہا کہ عبد کا مطلب ہے غلام. غلام کس تناظر میں؟ یعنی کہ انسان جو بھی معاملہ کرے وہ اس کا معاوضہ نہ مانگے، یا اس چیز کا اس کا معاوضہ اس کے ذہن میں نہ ہو. کیونکہ جو عام جو ورکر ہوتا ہے، وہ جو روزگاری ہے یا جو تنخواہ ہے اس کا متمنی ہوتا ہے، لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ بغیر کسی تنخواہ کے یا بغیر کسی نتیجے کی اپنے مالک ہوتا ہے، اس کی وہ خدمت کرتا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح کا رشتہ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، انسانوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے، اور وہ جو آگے سلسلہ آ رہا ہے اسے مزید واضح ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جو لویلٹی ہے نا، اس کو اصل میں یہاں ڈیفائن کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگلی جو ورڈز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کہ الذی خلقکم، جس نے تم لوگوں کو تخلیق کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اس آیت کو اگر ہم ڈیپت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں، چلو یہ تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پہلے تھے ان کو بھی تخلیق کیا، اس کی یہاں پہ لاجک کیا بنتی ہے. دیکھیں، جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، میں پھر اسی جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اس کا، قرآن کا، اس میں ہم نے پہلی چیز یہی دیکھی کہ ہم انشاءاللہ اس قرآن کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں جو لا ریب کا معاملہ ہے اور ہدایت کا معاملہ ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے بڑھتی چلی جائیں گی. آیت کا جو لفظ ہے آیا، یہ قرآن نے بہت اسپیشل طور پہ استعمال کیا ہے. اپنا جو ایک فقرہ ہے نا، جو سینٹینس ہے، اس کو قرآن آیت کہتا ہے. آیت کا مطلب ہے نشانی. نشانی یعنی ایک معجزہ بھی ہے، معجزہ بھی کہا جاتا ہے آیت کو، لیکن اس کا ترجمہ ورس کرنا یا سینٹینس کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس الفاظ میں، کیونکہ آیت اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں کی پہچان ہے. اصل میں میں اس کو مزید یوں بتاؤں گا کہ جو سورت ہے، اس کو آگے ہم مزید تفصیل میں آئیں گے، کیونکہ سورت کا ذکر اگلے آیات میں پھر آ رہا ہے. جو سورت ہے وہ ایک مکمل ایک مضمون کی بات کرتا ہے، اور جو آیت ہے وہ اس مضمون کی ایک خاص تفصیل کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس میں آیت میں جو چیز امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ اس سے ہم کس طریقے سے اللہ کی تخلیقیت یا اس کی ربوبیت کو ڈیفائن کریں گے، آیت میں جو بنیادی چیز ایک ہوتی ہے وہ ہے اس کا سٹرکچر، اس کا بناوٹ، इसको हम एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। फिर उसके अंदर होती है तरतीब तंजील, कि वो आयत किस तरतीब से अल्लाह ताला ने रखी है, और वो तरतीब जो है ना असल में इल्हाम की तंजील का वो हिस्सा है, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरीके से उस आयत को नाजिल किया है, जिस तरह आप कहेंगे कि एक सीढ़ी के ऊपर जिस तरह चढ़ना होता है या उतरना होता है स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को आप देखेंगे कि जो पहले है और जो बाद में है उसका खास रीजन है, इसको बनावट और तरतीब दोनों कह सकते हैं। फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर मुसव्वरी क्या है, उसके अंदर अल्लाह ताला किस क्या तस्वीर कशी वहाँ पे फरमा रहे हैं, यानी फिर उसकी मुसव्वरी जो डिज़ाइन जिसको आप कहते हैं डिज़ाइन स्ट्रक्चर या उसका थीमेटिक व्यू जो होता है वो उसको देखना होता है। और फिर उसमें जो उसके अंदर फिल्माइजेशन होती है, यानी जो कंप्लीट सूरत होती है ना, उसके अंदर एक खास शॉट होता है, जिस तरह कैमरा शॉट्स नहीं होते हैं कि एक खास शॉट को वो डिफाइन कर रहा होता है पूरी सूरत के अंदर असल में, तो ये इसलिए भी निशानी है। फिर ये खूबसूरती आयत के अंदर ये होती है कि वो एक बामानी और वाज़े बात होती है, ये वैसे नहीं है कि बाज़ दफ़ा शेर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ शेरों का कोई खास माने नहीं होता, वो सिर्फ वजन के लिए लिखे जाते हैं। कुरान की आयत इसलिए स्पेशल है कि वो वजन के लिए नहीं होती, वजन उसमें मौजूद है, उसमें एक रब्त भी मौजूद है, उसमें एक लय भी मौजूद है, लेकिन उसमें एक बामानीपन उसका होना जो है ना वो खुदा की रबूबियत को साबित करता है। फिर इसमें यह है कि हर जो आयत है वो कुरान का जो तनाजुर है उसको वो डिफाइन करके देता है आपको, यानी कि वो कोई भी आयत ऐसी नहीं होगी कि वो कुरान से तनाजुर से हट के कोई बात करेगी। तनाजुर क्या मतलब, तनाजुर का मतलब ये है कि कुरान जो नाजिल हुआ वो एक खास वर्ल्ड व्यू को वो कैटर करता है, असल में इंसानों को एक खास तालीम लेके आता है कि इंसानों को किस तरीके से सोचना है, उनकी क्या तरजीहात होंगी और वो किस तरीके से अमल करेंगे, किस तरह रब्त, ये पूरी तफसीलात वो उस आयत के अंदर भी इंडल्ज होती है असल में, यानी कि वो उससे बाहर की चीज नहीं होती है। फिर यह है कि उसके अंदर एक इस्तेदलाल की मौजूदगी होती है हमेशा, यानी वो वैसे नहीं है कि बात वैसे कर ली, लय भी बन गया, अक्सबंदी भी होगी, सब कुछ भी होगा, लेकिन उसमें कोई यानी कि उसमें कोई मंतक ना हो उन चीजों में, तो उसमें मंतक भी होती है। फिर यह है कि उसके अंदर एक गहराई होती है, यानी कि गहराई का मतलब ये है कि जो शख्स जिस इल्म के दर्जे से उस आयत को पढ़ेगा या उस सूरत को पढ़ेगा वो उस दर्जे से उसको वो समझ आ जाएगी। जो जाहिर जो सतही इलम रखने वाले लोग होंगे वो सतही बात समझ जाएंगे और वो मुतमैन हो जाएंगे, जो एक साइंसी इलम के साथ या मंतक के साथ आएंगे तो वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा कुरान खुद और वो आयत खुद। मैं ये सारी तफसील इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अगली मैं उसकी बेस बना रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आगे आयत आई है ना उसमें हम इसको दोबारा रिकंसिडर करेंगे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ले आओ एक सूरत इसकी मिसाल अगर तुम लोग इसका इनकार करते हो, तो ये मैंने बुनियाद बनाने की कोशिश की है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ऐ इंसानों तुम लोग अल्लाह की गुलामी में आ जाओ सारे, और वो है रब तुम्हारा जिसने तखलीक किया तुम्हें और तुमसे पहलों को। अब देखें इसमें बात ये हो रही है कि देखें जब इंसान का सबसे जो करीब तरीन ताल्लुक होता है ना वो उसकी माँ के साथ होता है, क्योंकि वो उसकी रहम से आता है इंसान, और फिर उसका बाप और उसकी फैमिली और उसके फिर बड़े और बड़े। मतलब ये है कि इंसान जिस मुआशरे में पैदा होता है और जिस घर में पैदा होता है तो वो किसी हद तक अपने आइडेंटिटी के हवाले से अपने घराने से और अपने बुजुर्गों से जुड़ा होता है, यानी उसकी जो लॉयलिटी होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं ऐसा अमल करूं कि मेरा जो इर्द गिर्द है, मेरा जो मुआशरा है उससे मैं बगावत पे ना आ जाऊं, ताकि क्योंकि उसको कबूलियत चाहिए होती है माशरे के अंदर। अब आप दोबारा अगर इस आयत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जब अब्द की बात की है, अब्द का मतलब ये है कि तुम लॉयलिटी में जो तुम पैदा हुए हो या तुमसे पहले पैदा हुए हैं उनकी लॉयलिटी के बजाय मेरी लॉयलिटी की तरफ आ जाओ। लॉयलिटी क्यों जरूरत है इंसान की, और उसका नतीजा भी आखिर में आप देखेंगे, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लाल्लाकुम ततकून। लॉयलिटी इसलिए जरूरत है, देखें अगर एक बच्चा होता है उसको वालदैन कहते हैं कि तुमने नमाज पढ़नी है, ठीक है बच्चा नमाज पढ़ता है जब तक उस पर सख्ती होती है क्योंकि वालदैन उसको सख्ती कर रहे हैं। अब देखें उस बच्चे की लॉयलिटी नमाज के साथ नहीं है, उसकी बच्चे की लॉयलिटी वालदैन के साथ है, क्योंकि वालदैन उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको हिफाजत करते हैं, उसको मोहब्बत देते हैं, तो वो उस लॉयलिटी की वजह से नमाज पढ़ता है। अब अगर वालदैन ना हो फर्ज किया और वो ना देख रहे हों, तो क्या वो फिर भी नमाज पढ़ेगा? अमूमन फिर ये ऐसा ही होता है कि ऐसे बच्चे जो सख्ती की वजह से नमाज पढ़ रहे हैं या सख्ती की वजह से कोई अमल कर रहे हैं, तो वालदैन की गैर मौजूदगी में, फ़र्ज़ किया वो कहीं खाने पे मौजूद थे या कहीं गए हुए थे, सौदा सलफ लेने गए थे वालदैन और पीछे, तो फिर ऐसा भी होता है कि हमने तो मस्जिद में देखा है कि मौलवी साहब के डर से लोग बगैर वजू के भी नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। देखें, इसमें अल्लाह ताला सारी वो चीज़ें यहाँ पे डाल रहा है। तुम लोग जो है ना लॉयलिटी की एतबार से अल्लाह से मुतालिक हो जाओ, और उसका फ़ायदा क्या होगा भाई? यानी इंसान, आप पहले भी हमने डिस्कस की थी ये बात कि इंसान कोई भी अमल नहीं करता जब तक उसको उसका फ़ायदा नज़र ना आ जाए। तो अल्लाह ताला को इंसान की फितरत को पता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, तख्लीक की बात पहले आ गई है। तो कहते हैं कि इसका फ़ायदा तुम लोगों को ये होगा कि तुम तकवा तकवे वाले बन जाओगे, तुम एहतियात वाले बन जाओगे, तुम हर चीज़ों का ख्याल करने वाले बन जाओगे हर लम्हा, जिस तरह पहले हमने तकवा को डिफाइन किया था ना। इसका फिर अगला फायदा जो है ना, फिर अगली आयत में आ रहा है कि इस तकवे का फायदा ऊपर भी डिफाइन हुआ है कि तकवे का फायदा यही है कि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल होगा, ठीक है, हिदायत तुम्हारे पास आएगी। लेकिन इसको दोबारा अल्लाह ताला डिफाइन भी कर रहे हैं, अगली आयत इसको कम्प्लीट भी कर रही है। अब एक चीज इस आयत में मजीद देखने वाली है, और वो ये है कि अल्लाह ताला पहले अगर उसके तसलसल को देखें, जिस तरह हमने कहा ना कि उसके आयत के अंदर तसलसल भी होती है, ये नहीं होता कि पहली चीज़ जो आ गई है और जो बाद की चीज़ आ गई है वो वैसी लय के लिए डाल दी गई है या उसके लिए खूबसूरती के लिए डाली गई है। रब पहले आया और खलक बाद में आया। अब आम तौर पे तो इंसान ये सोचेगा कि देखो, मैं अगर तख्लीक नहीं हुआ तो मेरे रब का तसव्वुर क्या है, अगर वो सतही तौर पे सोचेगा। लेकिन अल्लाह ताला उसके कंट्रेरी एक बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को उस गहराई में लेके जाना चाहते हैं कि मैं रब था तुम्हारी तख्लीक से पहले भी, और जो जो कुछ मैंने किया वो तुम्हारी तख्लीक तक जो बात पहुंची है वो सारा एक सिलसिला था मेरी रबूबियत का, कि तुम लोग तख्लीक हुए हो। देखें, इससे एवोल्यूशन की बात नजर आ रही है यहाँ पे हमें, सही है, और यही बात अगली आयत में अल्लाह ताला बता भी रहे हैं। तो इंसान की तख्लीक से पहले या सारी चीज़ों की तख्लीक से पहले भी एक एक से ये भी बात वाजे हो रही है कि अल्लाह ताला कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला थे, और जब कुछ भी नहीं होगा तो अल्लाह ताला होंगे, ये मंतक भी से साबित हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगली आयत मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम मेरा थोड़ा कम है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशन व समाअ बिनाअ, अल्लाह ताला कहते हैं कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया। यहाँ पे देखें, जअला आ गया है, ऊपर आ गया है रब और खलक, ठीक है, ये तीन चीजें कंटिन्यूटी में आ रही हैं। अब आप देखेंगे कि अल्लाह ताला, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, यानी कि वो अल्लाह ताला हमारे रब भी हैं, और उन्होंने ये चीजों को तख्लीक भी किया है और फिर उसको संवारा भी है। जाला के बाद आप देखेंगे कि बिना भी आ गया है, ठीक है ना, ये एक ही वर्ल्ड व्यू है, उसको वो एक ही जगह पे ले आए अल्लाह ताला, ताकि क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने खलक का जो होता है ना, तख्लीक होती है कुछ ना से, किसी चीज को बनाना, कोई चीज मौजूद नहीं थी और उसको बनाया गया है। और जिस तरह है, वह समा बिना, कि हमने समा को, जो आसमान है, उनको पूरी तरतीब से इकट्ठा करके एक मजबूत छत बना दिया, लेकिन चीजें मौजूद थी उससे आसमान बन गया। और फिर जाल लकुम अर्दा, कि हमने जो जमीन है उसमें, जाला भी ये होता है कि चीजें जो पहले तख्लीक हो चुकी होती है ना, उससे कोई चीज अगर इंसान बनाता है या खुदा बनाता है, और अगर इंसान भी बनाता है तो असल में खुदा ही बना रहा होता है, तो वो अमल जो चीजों की मौजूदगी से असल में रिक्रिएट होता है, जिस तरह इंसान तख्लीकात करता है, वो उसका जाला के सिफ्त में आता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने फिर इन जो तख्लीक की सारी चीजें, उससे मैंने जमीन को फर्श बनाया। फर्श का मतलब ये है कि उसमें तुम लोग रहने, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहने की काबिलियत रखता हो, यानी ना वहाँ पे ज्यादा गर्मी हो, ना वहाँ ज्यादा ज्यादा ठंड हो, और वहाँ पे जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो ऐसे ना हो कि वहाँ पे वो इंसान ना रह सके। तो यानी कि पूरा जो उसके लिए माहौल बनाया इंसानों के लिए, और फिर आसमान को इस तरह बनाया कि वो प्रोटेक्टिव है इंसान के लिए, कि ऊपर से कोई भी चीज़ जब उस मदार में दाखिल होती है तो वो जल जाती है इससे पहले कि वो जमीन से टकराए। तो ये समा बिना जो हिफाजत की तरफ अल्लाह ताला इशारा फरमा रहे हैं। और फिर जब ये सारी चीजें बनाई तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वानजल मिनस समाए माउ, फिर मैंने आसमान से पानी को नाजिल किया। आखरज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, फिर पानी नाजिल किया तो उससे जमीन से समरात खारिज की, या खारिज की का मतलब ये है कि जब समरात का मामला आता है ना, समर कहते हैं फल को या नतीजे को, तो जमीन से जो चीजें निकलती हैं या ना, समर वो चीज होती है कि जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यानी कोई भी नतीजा। हम उर्दू में वैसे इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये उसके अमाल का समर है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर जब मैंने सारी चीजें बनाई तो तुम लोग मेहनत करके जमीन में से मेरी ही फितरत पे बनी हुई चीजों की वजह से तुम उसमें से फल खाते हो और वो तुम्हारे लिए रिजक बनता है। यहाँ पे एक चीज मैं मजीद हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, वअंजल मिनस समाए माअ। इसमें दो व्यू है ना, एक तो बंदा सतही तौर पे पढ़ेगा तो वो कहेगा कि चलो जी आसमान से अल्लाह ने बारिश नाजिल की, लेकिन इसमें इसके इन डेप्थ एनालिसिस ये है कि बारिश तो अल्लाह ताला नाजिल बेशक करता है और उससे समरात निकलती हैं, लेकिन जो पानी है अल्लाह ताला उस पानी की वजूद के बारे में इशारा फरमा रहे हैं तखलीक के बाद, यानी जब सारी चीजें बनी तो पानी जमीन का हिस्सा नहीं है। ये हम लोग जो साइंस पढ़ते हैं उनको पता है कि पानी जमीन से नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने स्पेशल क्रिएशन की है पानी की, और वो जमीन पे उसको नाजिल किया जिस तरीके से बाकी भी मादनियात हैं, जिस तरह लोहा के बारे में, लोहा जो है आयरन उसके बारे में भी यही है, मेटल्स जो हैं कि अल्लाह ताला ने खास तौर पे इंसानों के लिए जमीन में नाजिल किए ताकि उससे वो रिज्क हासिल करें। तो पानी भी उन्हीं से एक है जिसकी तरफ अल्लाह ताला बार बार इशारा फरमा रहे हैं। अब देखें, हम मुख्तलिफ सियारों पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि पानी है कि नहीं है, क्योंकि इंसान को ये समझ आ गई है कि जहाँ पे पानी है तो वहां पे नबतात होंगे, वहां पे जिंदगी पॉसिबल हो जाएगी। तो उसी तरफ इशारा है कि तुम उन चीजों से फिर रिस्क हासिल करते हो। फला तजअलू लिल्लाह अंदादा वअंतुम तालमून, अब उसको कंप्लीशन मिल रही है पिछली आयत को, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम लोग फिर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक मत बनाओ, और तुम इलम रखते हो, यानी अगर तुम इस चीज का इलम को जानते हो, चीजों को जाने बूझे जान बूझ कर तुम अल्लाह के मामलात में चीजों को शरीक मत करो, यानी ये इलम वालों से, यानी जब आपके पास एक चीज समझ आ गई है तो उसको तुम लोग उल्टा मत करो। ये दोबारा कुफार और मुनाफिकीन की तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पे असल में, यानी ऊपर से जो सूरत आ रही है उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे चल रही है। तो मैं अब इसको क्लोज करूंगा कि देखें यहाँ पे अल्लाह ताला तखलीक की बात कर रहा है और इवोल्यूशन की बात यहाँ पे अल्लाह ताला ने की है इनडायरेक्टली, कि किस तरीके से इंसान को अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर बसाया है और उसको महफूज किया है, ताकि वो जो इम्तिहान का मामला है जो इंसान से अल्लाह ताला चाहता है, और वो तख्लीकी सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, उसका समरात अल्लाह ताला इस जमीन में चाहता है वो, ताकि मुकम्मल हो। और मेरी बात फिर अब यहाँ पे मुकम्मल हो रही है, मजीद जो है ना इंशाल्लाह फिर अगली दफा देखेंगे या बाद में देख रहे हैं। अब आप लोग जो इस बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं वो करें। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, इसकी थोड़ी सी हमने तफसील की थी, इसके बारे में लिखा है मैंने कि लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तहतदून के पैराए में है यहाँ पे, ताकि तुम हिदायत वाले।